ग्यारह 1967 कहा चला है, आज अंधेरे में है हम इंसान, बाबा ने क्यों चुना? उनके सामने ये गीत गाने की क्या जरूरत? आज अंधेरे में है हम इंसान, इंसान किसे कहा जाता है? इंसान की औलाद इंसान, इसकी शान में रहता है। जैसे मनुष्य की मनु की औलाद मनुष्य, ऐसे इंसान की औलाद इंसान, इसकी शान में रहता है। ये समय की बात है, जो आदमी जिंदगी की शान में रहते हैं वही है असली इंसान। परंतु फिर अंधेरे में कैसे है? ये शूटिंग का चक्कर चलता है। शुरू शुरू में जब बाप को पहचानते हैं, ये आज में उनसे साइन करके देते थे और एडवांस में स्टाम्प पेपर पर नोटरी के सामने साइन करके देते कि हमारा रूहानी बाप हमको मिल गया। पर जब शूटिंग का चक्कर चलता है औरों के संसर्ग संपर्क में आते आते माया बाइनोरा डालती और सतो प्रधान से सतो तमो रजो में गुजरते हुए आगे सबकी तामसी तेज बनती, सबको बाप के ऊपर निश्चय और अनिश्चय आते हैं। अनिश्चय आता है माना सूरज छुप गया, निश्चय आता है माना सूर्य उदय हुआ। सूर्य उदय होता है तो सोझरा हो जाता है, सूरज बुद्धि में छिप जाता है, बुद्धि रूपी धरनी है ना, धरनी में जब सूर्य छिप जाता है तो क्या होता है? अंजाम अंधेरा हो जाता है। उस समय के लिए ये गीत गाया हुआ है, हम सब इंसान इस समय अज्ञान के अंधेरे में आ गए हैं। तो बाप पूछते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुमने क्या सुना और ये किसने पूछा? रूहानी बच्चों से रूहानी बाप ही प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि बच्चों को पहले पहले ही समझाया जाता है आत्माभिमानी होकर के बैठो। ये है पहले नंबर की ऊंचते ऊंच सब्जेक्ट, शूटिंग के चक्कर में आते हैं तो आत्माभिमानी से देह अभिमानी बन पड़ते हैं। जो भी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे ब्राह्मण कुलभूषण, वो बाप के सामने आत्माभिमानी होकर के बैठेंगे। क्योंकि तुम बच्चों का जो कुल है कौन सा कुल है? ब्राह्मण में भी कुलियां होती है। कौन सी कुली के ब्राह्मण हो? जो भी कुलिया है कितनी ऊंची कुली कौन सी है? सूर्य से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। तुम सूर्यवंशी बच्चे हो, चौरासी जन्मों के चक्र में आदि से लेकर के अंत तक कौन से बच्चे हैं जो कुछ न कुछ आत्मिक स्टेज में टिके रहेंगे? बाकी आगे जन्म आया तो सबको गिरा देती है, वो एक अलग बात। इतने बड़े ब्राह्मणों को परिवार में मुट्ठी भर है, अगर आत्मिक स्थिति में रहने की कोशिश भी करते हैं तो सफल हो पाते हैं। ये नंबरवार सफल होते हैं, नंबरवार सफल होंगे तो अपन नंबर में जाने वाला तो एक ही होगा। वो ही होगा आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाला, बाकी सब उसकी औलाद हो गई इंसान। उनके लिए गीत गाया हुआ है, सबको निश्चय निश्चय का चक्कर चलता है। कोई ऐसा हो जिसको निश्चय निश्चय का चक्कर न चलता हो वो हाथ उठावे। उन्हें हाथ उठा सब बच्चों को माया बाय डोरा डालती है, आदि में न सही मध्य में न सही अंत में तो पकड़ ही देते। भले बाप सुप्रीम सोल जो रूहानी बाप है वो शक्ति पर आया हुआ है तो उसे बार बार कहना पड़ता है बच्चे क्या होकर बैठो, आत्माभिमानी होकर के बैठो। पहले नंबर की ऊंची तो उस सब्जेक्ट है। जो भी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे, ब्राह्मण कुलभूषण होंगे, जरूर आत्माभिमानी होकर बैठेंगे। तुम्हारा कुल भारत तो क्या सारे विश्व से न्यारा है, सारे विश्व भर में तुम्हारे जैसे उच्च कुल की आत्मा कोई होती ही नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार मुखवंशावली, सर्वोत्तम ब्रह्मा कुलभूषण, क्योंकि तुम डायरेक्ट ईश्वर की संतान हो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, क्या हो? डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तुमने डायरेक्ट प्रजापिता को पहचान, जो मुकदर रखो होता है प्रजा 500-700 करोड़, तो प्रजा का पिता भी अंत तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच रहता है। जब तक सबकी गति सदगति न हो जाए तब तक वो वापस नहीं जा सकता। ऐसे जिम्मेदार बाप को तुमने पहचाना है, तू तो भाई भाई तू सभी आत्में है, जिनको ब्रदरहुड के कहा जाता है, सबका बाप एक भगवान है। और उनको कहा जाता है ऊंचे ऊंचे भगवान, नहीं तो कोई किसी को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, कोई किसी को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। समझते हैं इस दुनिया में साकार रूप में, इससे ऊंचा पार्ट बजाने वाला कोई भी नहीं है। बहुत जी लोग किसको भगवान समझ के बैठ जाते हैं, महात्मा बुद्ध को भगवान समझ के बैठ जाते, परंतु वो सब नंबरवार है। नंबरवार जनरेशन उनको पहचानती है और मानती है, जो सारी मनुष्य शक्ति का पिता है वो सिर्फ एक ही। उस रचयिता और उसकी रचना के ज्ञान को कोई भी ऋषि मुनि आदि नहीं जानते, वो भी नेक नेक कहते गए कि मन अंत, हम उसके अंत को नहीं जानते, अंत को नहीं जानते, वो आदि को भी नहीं जानते होंगे, अर्थात हम रचयिता को नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो बोया नास्तिक हो गए, रचयिता कोई नहीं जानते तो उसकी रचना को भी नहीं जानते, दोनों को नहीं जानते तो नास्तिक हुए ना। तो ऊंचे से ऊंचे रचयिता बाप क्या रचना करके जाता है, जो और धर्म पिताओं के मुकाबले उसे ऊंचे ऊंचे कहा जाता है। और धर्म पिताएं ऊंचे ऊंचे नहीं कहे जाते, प्रैक्टिकल साकार में, और वो ऊंचे ऊंचे कहा जाता है। ऐसी क्या खासियत है, ऊंचे ऊंचे रचयिता होगा तो रचना कैसी रचेगा, ऊंचे ऊंचे रचना रचेगा। क्राइस्ट की दुनिया ऊंचे ऊंचे दुनिया 2000 साल पहले रची गई, महात्मा बुद्ध की दुनिया उससे पहले रची गई, इब्राहिम की दुनिया 2500 साल पहले रची गई, उससे ऊंच और सात्विक इस्लाम धर्म की रचना कोई होती नहीं। हाँ, उस धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं भारतीय वो ऊंचे हो सकते हैं, आधार मूर्त है, बीज रूप है, परंतु वो भी ऊंचे के ऊंचे भगवान आकर के जो ऊंचे के ऊंचे दुनिया रचते हैं उस दुनिया के भांति नहीं बन पाते। क्यों? जो जिस धर्म का होगा वो उसी के गीत गाएगा, उसी की बात मानेगा। तो अंततः जब माया पिछाड़ी पड़ती है तो भगवान बाप को भूल जाते हैं, ऊंचे ऊंचे रचयिता को भूल जाते हैं, और नंबरवार जो नीचे है उनके चक्कर में आ जाते हैं। ये शूटिंग अभी चल रही है। अपनी अपनी बुद्ध रूपी धरणी को हिला डुला के देखना है, इसे चक्कर में कहीं हम तो नहीं आ जाते। एक बार चक्कर में आए, दो बार आए, एक तो बार की तो माफी हो जाती है पोता मिल देने से, लेकिन बार बार अगर ऐसी अवस्था गिरती जाती है तो अंत क्या होगा? अंत मते सोगते हो जाए। लंबे समय का जो पुरुषार्थ होगा अंत समय में कोई प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो वो आत्माएं जो इस्लाम धर्म की भी जो उपात्माएं होंगी या आधारभूत आत्माएं होंगी वो नई दुनिया का मोहरा देख सकेंगी। नई दुनिया में जा सकेंगी या कुछ समय के बाद आवेगी? जरूर कुछ समय के बाद आवेगी। जो उन्होंने रात वो जाना नहीं, जो ऊंचे ऊंचे रचयिता बाप है वो पहचाना नहीं। तो रचना को भी नहीं जानते, रचयिता को भी नहीं जानते, तो उनको कहेंगे डबल नास्तिक। अगर ऊंचे से ऊंचे बाप की जो वंडरफुल बेस्ट काइंड ऑफ वंडर ऑफ द वर्ल्ड उस रचना को अगर जान जाए उस दुनिया में भी पहुंच जाए। जानेंगे तब जब उस स्टेज को पावे। बाप कहते हैं पहले अलग को याद करो, अलग मना खड़ा डंडा जो निश्चय बुद्धि के पुरुषार्थ में आग से लेकर के अंत तक खड़ा रहता है। उस अलग को याद करेंगे तो रचना की आदि पर्यंत का समाचार बाप आपे ही बताएंगे। न भी जानते होंगे तो भी बता देंगे। तुमको रचना की आदि पर्यंत का ज्ञान नहीं है, विश्व वालों को ज्ञान है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जो रचना के आदि पर्यंत को जानता होगा, जानने वाला होगा, वो ही दूसरों को समझा देगा। खुद ही जानने वाला नहीं होगा तो दूसरों को भी नहीं समझा सकता, उनको पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्या कहा? ऐसी क्यों बोला? बाप अपने ही आप बताए देंगे तो हमको पूछने की दरकार है या नहीं है? हैं? नहीं है। तुमको पूछने की दरकार नहीं रहती, तुम तो पहले तुच्छ बुद्धि पत्थर बुद्धि थे ना, कुछ जानते थे क्या? बाप ने आकर के बताया तो जैसे चूहे को अंडे की गांठ मिलती है तो मुंह में दबाए दबाए फिरता है, देखो मैं क्या बन गया, मैं पंसारी बन गया। तब तो गीत भी गाते हैं, ये भगवान ज्ञान का दीपक आ करके जलाओ, क्योंकि आज हम इंसान अंधेरे में आकर के जलाओ, आया हुआ तो है, आया हुआ है लेकिन हमारी बुद्धि में से बार बार तिरक जाता है। तो ये गीत भी इस समय निकलते हैं जबकि बाप आएंगे, सत्युग में नए से गीत बनाएंगे और गावेंगे। वहां तो सब की ज्योति जल जाती है, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप आकर के देते हैं। ज्ञान का साधन तो एक ही बात है, अनेक तो हो नहीं सकते, वो एक ही सर्व का संकल्प की जाता है। जो सबके दीपक जलाता है, भक्ति मार्ग में इसकी कोई यादगार है? दीपावली में क्या यादगार है? पहले यमराज का बड़ा दीपक जला लेंगे, बाद में उस बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं। कहते हैं यमराज या धर्मराज, किसका राजा? धर्म का राजा। मुसलमान लोग उसे कहते हैं अल्लाह अवलदीन, ये ऊंचे के ऊंचे अल्लाह है, वो ऊंचे के ऊंचे दीन की स्थापना करते हैं। दीन माने धर्म, बाप सर्व का संगति जाता है। वो समझते हैं हमारे में शास्त्रों का ज्ञान है, परंतु वो है तो भक्ति कौन समझते हैं? कौन समझते हैं? बात हुई ना, वो शास्त्रकार पंडित विद्वान आचार्य जिनके अंदर शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ है, वो अहंकार में आकर के अपन को बहुत ज्ञानी समझते हैं, चाहे हद के शास्त्री हो और चाहे बेहद के शास्त्र पढ़ने वाले हो। बेहद के शास्त्र कौन से हैं? भोले भोले रूपी शास्त्र को पढ़ने वाले, ज्ञान का अहंकार करने वाले क्या कहेंगे बार बार? रेफरेंस देंगे, इस तारीख की मुरली में ये कहा है, उस तारीख की मुरली में ये कहा है, फिर ये बात ऐसे है तो ये कैसे हो सकती है? ये स्पष्टीकरण चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रार्थ करते थे, वैसे यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या करते हैं? शास्त्रार्थ करते हैं। क्या मुरली शास्त्र है? माउंट आबू में जो चलाई गई मुरली है, जो हाथ में यहां पकड़ी हुई है, वो शास्त्र है कि भगवान की वाणी है? भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी अगर समझ में ना आए, उसका राज समझ में ना आए, और रचयिता और रचना का राज हम दूसरों को समझा ही नहीं सके, और बातें छोड़ के गीता का भगवान साकार में कौन है ये ही हम साबित न कर सके, उस वाणी को भगवान का बोला हुआ महावाक्य कहेंगे? जैसे गीता पढ़ती है, गीता की 108 टीकाएं हैं, उससे भी ऊपर है, अर्थ करने वाले डिटेल में अर्थ करते, परंतु गीता पढ़ने वालों ने क्या रचयिता और रचना के आदि व्यक्ति को जाना? नहीं जाना। ऐसे ही जो माउंट आबू से चली हुई मुरली है, उस मुरली के आदि मध्यंत को कोई ने जाना है? कोई ने नहीं जाना। जानने वाला वही होगा जो इंसानों में पहला पहला इंसान हो, इंसान अर्थात आत्मिक स्थिति की शान में रहने वाला। और तो नंबर चार, इंसान की औलाद, तो वो शास्त्री लोग समझते हैं हमारे में शास्त्रों का ज्ञान है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति है, सारा भारत तो क्या, सारे विश्व में इस समय भक्ति का पैर है। इसको भक्ति का भी कहा जाता है। तुम बच्चों को अब ज्ञान सूर्य का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, कौन दे रहे? देने वाला कौन है और लेने वाले कौन है? सन्मुख बैठने वाले लेने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल बाप के सामने डायरेक्ट बैठे हुए हैं, और देने वाला ऊंचे ऊंचे बाप है वो। अब माना कब है? संगम 67 की मुरली है, 67 की मुरली है, तो उस समय तीसरा नेत्र दिया है? उस समय कोई नेत्र नेत्री 100% कौन है जिसका शास्त्रों में गायन है, रूप है, मंदिर बने हुए हैं, उसको कोई ने 67 में पहचाना? नहीं पहचाना। तो साबित होता है कि अब जो शब्द बोला गया है समय की बात नहीं है, यौन समय की बात नहीं है। क्योंकि मुरली में जो कुछ बोला गया उसका क्लेरिफिकेशन कोई की बुद्धि में बैठ जाने। सूरदास के पद तुलसीदास के पद कबीरदास के कवित प्राइमरी स्कूल के बच्चों में रट लेते हैं, परंतु उनके गुरियात को नहीं जानते। जब वही कवित दोहे ऊंचे क्लास में पढ़ाए जाते हैं तो उसकी गहराई का पता चलता है। तो क्लेरिफिकेशन देने वाला बाप सुप्रीम टीचर के रूप में भी चाहिए। कोई बच्चों को कहते हैं या ज्ञान सूरी का तीसरा नेत्र तुम बच्चों को मिल रहा है, पहले बाप मिलता है या पहले टीचर मिलता है? पहले बाप मिलता है, जन्म देने वाला पालना देने वाला बाद में, भले बाप ही टीचर बने टीचर मिलता है। और भले एक ही हो, बाप भी वही पर्सनालिटी और टीचर भी वही पर्सनालिटी। ज्ञान मिलता ही है ब्राह्मणों को, शूद्रों को ज्ञान नहीं मिलता, उनको मिलता है ब्राह्मण की ने कहा जाता है। ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहा जाता है। तो बेसिक नॉलेज में बहुत ऐसे पुराने पुराने बैठे हैं जो डायरेक्ट ब्रह्मा की औलाद बने, उनको ब्राह्मण कहेंगे? ज्ञान तुम ब्राह्मणों को मिलता है, तुम किसके लिए बोला है? तुम ब्राह्मणों को बोला गया है, जरूर वो ब्राह्मण कोई पेक्युलियर ब्राह्मण है, स्पेशल ब्राह्मण है। उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, परिभाषा क्या होनी चाहिए? एक ब्राह्मण होते हैं ब्रह्मा को फॉलो तो करते हैं कर्मों में, लेकिन बात देहधारी मनुष्यों की मानते हैं। जो असली बाप है उसको पहचानते भी नहीं, उनको ब्राह्मण कहेंगे? ब्रह्मा की औलाद तो बने, ब्रह्मा नामधारी की गोद तो ली। नामधारी क्यों कहा? ये ब्रह्मा नाम यज्ञ के आदि से ही हुआ या बीच में आया? बीच में आया तो जरूर आदि ब्रह्मा कोई और हुआ होगा। ये आदि ब्रह्मा का टाइटल है जो सन 47 से शुरू हुआ उन ब्राह्मणों की बुद्धि में। सेकेंडरी ब्रह्मा हुआ बल प्रैक्टिकल पुरुषार्थ में, जो प्रैक्टिकल कर्म किया, जितना समझा उतना पवित्र रहने का पुरुषार्थ किया। कि क्या बात होती है? कितना समझा पवित्रता को? पवित्रता के बुरी अर्थ को ब्रह्मा दादा लेखराज ने कितना समझा, कहां तक समझा? हाँ, ब्रह्मा को शिव बाबा देवी बुद्धि कहते हैं। तो जैसे जैसे मुरली चलती गई, जैसे देवी ऊपर ऊपर की बातों को उठा लेता है, ब्रह्मा बाबा ने भी पवित्रता के अर्थ को ब्रह्मचर्य तक सीमित रखा। जैसे सन्यासी होते ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या उठाते हैं? ब्रह्मचर्य का अर्थ उठाते कि जो काम इंद्रिय है वो स्त्री के संसर्ग संपर्क में न जाने पावे। तो उसको पवित्रता कहेंगे क्या? वो सन्यासियों की पवित्रता है या गृहस्थियों की पवित्रता है? इसे सन्यासियों की पवित्रता कहेंगे। घर गृहस्थ में रहेंगे ही नहीं, अपनी परीक्षा ही नहीं लेंगे, तो अधूरे हो गए। बाप कहते हैं तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, जो ऊंचे ऊंचे बाप ब्रह्मा आदि ब्रह्मा, जो प्रजापिता ब्रह्मा तो अंत में प्रजापति कहा जाता है, उसके द्वारा तुम ऊंचे ऊंची मत पर चलते हो। ये बोला है मुरली में, ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को वर्षा देते हो, ब्रह्मा को फॉलो करना है प्रैक्टिकल कर्म में, परंतु बात मेरी मानना, ज्ञान करूंगा। जिन्होंने सन 67 तक ब्रह्मा जी में पार्ट बजाने को फॉलो किया, अर्थात कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर के रहे, बुद्धि में याद आती रही, बुद्धि उसी ओर जाती रही, तो आंखें जो सबसे जास्ती धोखा देने वाली है उन आंखों के ऊपर जीत पावेंगे? चलो और कर्मेंद्रियों को जीत ले, परंतु आंखों को जीत पाते हैं? सचिन में आधा कृष्ण का जन्म होगा, उनके लिए कहेंगे कि उन्होंने आंखों पर जीत पाई है? क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बचपन से ही वो आंख देखने में अभ्यस्त है। गुरुपी आंख उधर ही लटकी हुई है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अतीन्द्रिय सुख प्राप्त किया। हाँ, दूसरों के शरीर में प्रवेश करके बल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया, परंतु उसको पक्का ब्राह्मण नहीं करेंगे। पक्के ब्राह्मणों को क्या लक्ष्य मिला हुआ है? न नरसिंह डायरेक्ट नारायण बनने का लक्ष्य मिला हुआ है। जो डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनेंगे वो दृष्टियों से बच्चों की पैदाइश करेंगे, ये सारी दुनिया के वाइब्रेशन को ही चेंज करने वाले होंगे, सारी दुनिया के वाइब्रेशन को चेंज करने वाले होंगे। उनकी दृष्टि में तो पावर होगी लेकिन वाइब्रेशन भी इतने पावरफुल होंगे कि एक जगह बैठे बैठे ही कोई भी आत्मा को बुद्धियों से कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। आखिर किसका होता है? जो अपने को असमर्थ समझ लेता है उसका होता है, या जो समर्थी बाप की छत्र छाया में रहने वाला सर्वशक्तिवान बाप का मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा होगा वो अपने को असमर्थ महसूस करेगा, इसका हाथ फेल होगा। असमर्थ होगा उसका हाथ फेल होगा। ऐसे बहुतों के हाथ फेल होने वाले, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेरों के हाथ फेल हो रहे हैं, और आने वाली दुनिया में जो बाहर की दुनिया के हैं बड़े बड़े, चाहे राजनीतिक हो चाहे धर्म नेताएं हो मल्टी मिलियनेयर हो, सब के हाथ फेल होंगे। परंतु जो बाप के बच्चे हैं उनके हाथ मजबूत होंगे या कमजोर हो जाएंगे? मजबूत होंगे। ये बोला ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को ही मिलता है, न देवताओं को मिलता है राजा कृष्ण जैसे देवताओं को, और न शूद्रों को मिलता है। शूद्र किनको कहा जाता है? जो विकृत कर्म करते हो, कीमत के भर खिलाफ कर्म करते हो कर्म इंद्रियों से, और उसके आदि हो गए हो, बिना विकर्म किए रह न सके, वो है विपरीत कर्म करने वाले शूद्र संप्रदाय। बाप की वाणी को फॉलो कर नहीं सकते, और दादा लेखराज ब्रह्मा को भी कर्मों में फॉलो कर नहीं सकते। अगर दादा लेखराज ब्रह्मा के कर्मों को भी फॉलो करें और कामेंद्रियों से डिटैच होकर के रहे तो भी एक न एक दिन उनकी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरेगी और वो डायरेक्ट बाप से सीखने लग पड़ेगी। विजय महाराज के दावे बन सकते हैं। तो उनको ब्राह्मण कहेंगे या शूद्र कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे उनको भी ब्राह्मण कहेंगे। भक्ति मार्ग में वर्ण गाए जाते हैं, गायन पूजन यादगार कहां का होता है? रंग में का होता है। तो तुम बच्चे सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो, तुम्हारा ब्राह्मण तू गाया जाता है और पूजा जाता है, चित्रों में दिखाते हैं ना, चित्र बनाया है विष्णु चतुर्भुज का, उसमें ब्राह्मण कहाँ दिखाए
हैं?
जो तुमने ज्ञान मार्ग का चित्र बाबा का बनवाया हुआ दिखाया है, उसमें मस्तक पर देवताएं दिखाई और चोटी में तुम ब्राह्मण चोटी के दिखाई गए। तो तुम्हारा यादगार है ब्राह्मण चोटी है ना, ब्राह्मणों के लिए भी गाया जाता है, एक है प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावलीता, मुखवंशावली ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली ब्राह्मण, और दूसरे हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली नहीं है। ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, नंबर वाले कोई ब्राह्मण की औलाद है ब्रह्मा की औलाद है, लेकिन जो अव्वल नंबर प्रजापिता ब्रह्मा है उसकी औलाद नहीं बने, माने उसके डायरेक्शंस को फॉलो करने वाले नहीं बने हैं, पहचानने वाले ही नहीं है। उनके लिए फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली है, प्रजापिता को पहचाने ही नहीं, प्रजा 500-700 करोड़, तो प्रजापिता के साथ रहने वाली प्रजा होगी ना, जब तक इस सृष्टि पर प्रजा है मनुष्य सृष्टि की तब तक प्रजापिता मौजूद होगा। तो जो प्रजापिता भगवंशावली ब्राह्मण होंगे वो प्रजापिता को पहचानते होंगे या नहीं पहचानते होंगे? पहचानते होंगे, ऐसे नहीं कि वो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली नहीं, वो है मुखवंशावली, उन्हें ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद नसीब हुई है, देह से लगा हुआ है, लेकिन जो ब्रह्मा मुख से असली वाणी निकलती है भगवान की वाणी, उससे उनका लगाव नहीं हुआ है, कोख से लगा हुआ माना गोद से लगा हुआ, वो सब विकार से पैदा हुआ है। से पैदा होते सतयुग में जो देवताएं कम कला के पैदा होंगे वो इंद्रियों की विकृति से पैदा होंगे, चलो कर्म इंद्रियों की विकृति से नहीं, ज्ञानेंद्रियों की विकृति से पैदा होंगे या वाइब्रेशन से पैदा होंगे? ज्ञान इंद्रियों का लगाव होगा, तुम तो हो एडाप्टेड बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के ब्राह्मण ब्राह्मणियां इतने ढेर कहां से आए? अरे 2-4 हो 10-30-50 हो तब तो कोई उंगली उठा ही सकता है, यहां तो ढेर के ढेर है। ये एडॉप्शन होती है, जो क्रिएटर पुरुष होता है वो पहले पहले किसको क्रिएट करता है? क्रिएटर जो बाप गाया जाता है वो बच्चों की पैदाइश करने के लिए पहले पहले किसको क्रिएट करता है? मां को क्रिएट करता है। तो प्रजापिता है जरूर कौन चाहिए है? प्रजा माता भी चाहिए। प्रूफ है तुम्हारे पास, ये जो जितने भी बैठे हुए सैकड़ों हजारों की तादाद है एक मां की औलाद है। उस मां का नाम क्या है? जगदम्बा। उसका नाम है ब्रह्मा को जगदम्बा को, बात तो एक ही है। तो जिस माता को पहले पहले अडॉप्ट किया उसको देख करके साथ अडॉप्ट होती जाती है, उनको माता कहा जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि माता को पैदा किया। पैदा किया क्या है? पैदा तो नहीं किया, वो तो पहले से ही ब्रह्मा कुमारी होती है, उसको सिर्फ अडॉप्ट किया। तुम सब हो अडॉप्टेड बच्चे, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर ब्रह्मा कुमारियां कहां से आ गई? कन्या को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको, फिर उनसे बच्चा पैदा होता है, तो माता कहा जाता है। फिर मां बूढ़ी होती है तो उनको दादी कहा जाता है। क्या दादी होती है वो बड़ी माता होती है, या जो राजमाता की गद्दी पर बैठती है वो बड़ी माता होती है? दादी मां बड़ी माता होती है, उसका नाम शास्त्र में दिया है जगदम्बा। और जो गद्दी पर बैठती है उसका नाम दिया है नारायण के साथ लक्ष्मी। अभी यहां दादी आदि की बात नहीं है। क्या क्या क्यों ऐसी नारी में दादी आदि की बात है कि नहीं? बात है। और यहां यहां दादी आदि की बात नहीं है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में अभी भाई बहन है। भले विजयमाला भी आएगी, वो भी आपस में क्या होंगे? भाई बहन। ऐसे नहीं कि शंकर की युगल पार्वती कहेंगे, वो दोनों भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हुए। या उनको क्या कहेंगे? उनको भी भाई बहन कहेंगे, उनका खून का रिश्ता होगा क्या? होगा? कोई खून का रिश्ता नहीं होगा। वो शादी की संस्था ही बाबा कैंसिल करते हैं, जिसमें खून का रिश्ता जोड़ा जाता है। कौन सा रिश्ता होगा? रूहानी रिश्ता होगा, रूहानी वाइब्रेशन का रिश्ता होगा, उसको जिस्मानी वाइब्रेशन नहीं कहेंगे। हम भगवान की संतान हैं, वो आपस में क्या हो गए? अब माने कौन मंत्रमाला की मड़के डायरेक्ट भगवान की संतान है तो आपस में क्या हो गए भाई भाई हो गए। मंत्रमाला की मड़के आपस में क्या है आत्मा आत्मा भाई भाई। फिर बाद में कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे भाई बहन। भाई भाई कैसे हो गए वो बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट किससे सीखेंगे बाप से सीखेंगे। ऐसे तो नहीं कहा मां बाप से सीखेंगे तो जिस बाप से सीखेंगे वो कौन सा बाप बुद्धि में पहले बैठता है रूहानी बाप या जिस्मानी बाप रूहानी बाप तुम्हारी बुद्धि में पहले बैठता है तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की कट करती है तो जिसकी आत्मा की सुई की कट सदाकाल की उतरी हुई है सदाशिव कहा जाता है उसको तुम पहचान लेते हो तो तुम भाई भाई हो। बाद में जब मां समर्पित होती है एडॉप्टेड होती है प्रजापिता को तब तुम आपस में क्या बनते हो उनको माता पिता समझने के कारण भाई बहन बनते हो। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं या इम्प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल बातें बस भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि व क्रिमिनल आई रखना ये क्रिमिनल एहसान तो हो जाता है। हम भाई बहन है ये पक्का पक्का याद है इसी बात में मेहनत है इस क्रिमिनल दृष्टि पर जो जीत पाते हैं वो ही स्कॉलरशिप लेते हैं। क्या भाई बहन की स्टेज पर जो नहीं आते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई के स्टेज पर नहीं आते हैं तो वो स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। उनको कहेंगे विजयमाला के मड़के विजयमाला के दाने उन्होंने ये पद कैसे प्राप्त किया कब प्राप्त किया सत्युग में प्राप्त किया या संगम युग पर प्राप्त किया जब तक जीना है तब तक पीना है जब तक पीना है पीने का काम चल रहा है तब तक संगम युग कहेंगे या सत्युग कहेंगे संगम युग। तो ये ट्रिनिटी किंगडम स्थापन हो गई है ये लक्ष्मी नारायण सत्युग की मालिक है ना उन्होंने ये पद कैसे प्राप्त किया पुरुषोत्तम संगम युग पर पद हमेशा पढ़ाई से प्राप्त किया जाता है ये है रूहानी पढ़ाई जो रूहानी बाप तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाते हैं बैठ करके पढ़ाते हैं लेटे लेटे नहीं पढ़ा सकते दौड़ते दौड़ते नहीं पढ़ा सकते क्या खड़े खड़े नहीं पढ़ा सकते नहीं रूहानी बाप जिस्मानी बाप में बैठते हैं स्पेशल पढ़ाई पढ़ाने के लिए। अंग्रेजी में इस नारे को स्पिरिचुअल नागरिक कहा जाता है। स्पिरिट माने आत्मा, स्पिरिचुअल माने आत्मिक नागरिक। स्पिरिचुअल नागरिक सिवाय ब्राह्मण के और कोई के पास होती नहीं। मनुष्यों को यह भी नहीं पता है कि भारत का प्राचीन स्पिरिचुअल रूहानी योग था, वो कोई जिस्मानी योग नहीं था। जो आसन लगाते रहते हैं, प्राणायाम सिखाते रहते हैं, उसको जिस्मानी योग कहेंगे या रूहानी योग कहेंगे? तो जिस्मानी योग है। तो अभी तुमको पावन बनना है बुद्धि योग से, हो सकता